जो हमारा अन्नदाता है अगर वो दुखी रहेगा तो कौन से भाव से हमको सब्जी और अनाज देगा, वो क्या भाव हमको एक्सेप्टेबल है। मतलब बहुत डायमेंशन है सोचने के, और हर एक डायमेंशन में हमको बहुत गहराई से सोचना होगा कि हमारी प्लेट कैसी होनी चाहिए और जो हमारा अन्नदाता है उसका मन कैसा होना चाहिए देते समय।
नमस्ते सबका कैफे रेनी डेज में बहुत बहुत स्वागत है. आई विल गेट द एडमिन स्टफ आउट ऑफ द वे. सो नम्र विनंती कि सब लोग प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को. आज की हमारी मेहमान है प्रतिभाताई, डॉक्टर प्रतिभाताई कोल त्रिपाठी. डॉक्टर प्रतिभाताई एस्ट्रोफिजिक्स प्रोफेसर रह चुकी है, मगर आजकल वो समाज कार्य में ज्यादा बिजी है. तो आसान से शब्दों में वो ऑर्गेनिक किसान भाइयों को कंज्यूमर से एक जगह, एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करती है जहां वो दो दो टीम्स मिल पाए. बेसिकली वो मिडिल मैन को कटआउट करती है और जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन देती है. आज की कोशिश ये है कि हम हिंदी में बातचीत करने वाले हैं. मेरी हिंदी बहुत परफेक्ट है नहीं, तो वो थोड़ी हिंदी मिश्रित, इंग्लिश मिश्रित, थोड़ी थोड़ी मराठी इस तरह से आएगी. मगर इससे ये फायदा होगा कि जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या चल रहा है कॉन्वर्सेशन. नमस्ते प्रतिभा ताई, वेलकम टू कैफे रेनी डेज.
नमस्ते ताई।
मैं ना स्ट्रेट प्रतिभा ताई इसी पे जंप करने वाली हूँ कि आप फार्मर्स और कंज्यूमर्स को कैसे एक साथ लाती है एंड एंड टेल अस द कॉन्सेप्ट अबाउट हेल्थी फूड बैंक.
जी, जब इसकी शुरुआत करनी चाही थी मैंने, तो मेरे कल्पना में कोई ठोस चित्र नहीं था कि मुझे क्या करना है। बट जर्नी के शुरू में इतना मैं तय कर चुकी थी कि मुझे मेरा घर और किचन तो विषमुक्त करना है। वो मेरे लिए मेरी जरूरत थी, मेरी फैमिली के लिए मैं चाहती थी। बट जब मैंने ऐसे नेचुरल फार्मिंग करने वाले किसानों को ढूंढना शुरू किया, और पहले तो मैंने मेरे किचन में बाहर से आने वाली चीज़ों की लिस्ट बनाई, उसमें से कई चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं घर में आसानी से बना सकती थी। तो मैंने ये चाहा कि इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल मुझे नेचुरली ग्रोन कैसे मिले और किन से मिले, वो मैंने पहले ढूंढने का कोशिश किया। बाद में जो सब्जी, अनाज, दालें, ऑयल्स, ये सब आता था, इसका भी सोर्स मुझे चाहिए था, जिनेन सोर्स, नेचुरल सोर्स, तो इसको ढूंढने का मैंने प्रयास किया। बट इस जर्नी में चलते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा ढूंढने वाली मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ में कई भाई और बहनें ऐसे हैं जिनको इसका शोध है, जो हमारे आस पड़ोस वाले रहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड सर्कल है। तो इस तरह से कंज्यूमर का एक छोटा ग्रुप शुरू हुआ, और फिर ये कलेक्टिवली हमारा जर्नी शुरू हुआ कि चलो किसान भाइयों को अभी खोजे। जैसे पहले हमको थोड़ा लीफी वेजिटेबल वाले किसान मिले, फिर सलाड और सब्जी करने वाले मिले, ऐसा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 7 ईयर्स वी गॉट ऑल, हमको सारे किसान मिले जो हमारे किचन को विषमुक्त बना सके। इसकी मुझे बहुत खुशी है, और ये जर्नी मेरे लिए उतनी ही कठिन थी जितनी कि अभी किसान भाइयों के लिए वो जर्नी कठिन है कि वो उगाए लेकिन बेचे कहाँ। किसान भाई भी ढूंढ रहे हैं जिनको इसका शोध है, और हम भी ढूंढ रहे हैं जो ऐसा उगाते हैं, बट वो मिसमैच हो रहा था, वो कहाँ ढूंढे हम कहाँ ढूंढे, हमारा मिलना नहीं हो रहा था। तो ये जर्नी में दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके आमने सामने खड़ा कर दिया, ताकि कंज्यूमर भी उनसे डायरेक्टली पूछ सके कि आप ये विषमुक्त उगाते हो, मतलब कैसे उगाते हो, कैसी फार्मिंग करते हो, क्या दिक्कतें आती हैं, और जो विषैली चीजें हैं, मतलब फर्टिलाइजर और वीडिसाइड डाल के जो उगाते हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्यों खाना चाहिए, ऐसी वाली चर्चाएं दोनों में आपस में होने लगी, और उसमें से क्लैरिटी बनने लगी। वो क्लैरिटी जैसी जैसी गहराती गई ना, वैसे वैसे कंज्यूमर्स का फ्लो बढ़ते गया, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है जो मैं करता हूं ना उसकी पीछे की बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो, और किसान भाई भी खुश होने लगे। आज तक किसान भाइयों ने ऐसा नहीं सोचा था कि कोई सब्जी लेते समय उनको ये पूछेगा कि आप ये कैसे उगा रहे हो। उनका श्रम का मूल्यांकन होना बहुत जरूरी था, मतलब मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जो आज की सोसाइटी में और आज के एजुकेशन सिस्टम में मिस हो रहा है। हम श्रम को बहुत निचला दर्जा देते हैं। माने माने अगर एक आईटी ऑफिस में काम करने वाला इंसान है और एक खेती में काम करने वाला किसान है, तो ऑब्वियसली समाज ये आईटी प्रोफेशनल को बड़ा दर्जा देते हैं, और किसान ने की हुई मेहनत को उतना वो एनकरेज नहीं कर पाते या उतना उनका मूल्यांकन नहीं कर पाते। इसलिए दोनों को मिलने वाली सैलरी में बहुत डिफरेंस है, गहरी खाई है। मुझे खुशी है कि जितना कंज्यूमर जागरूक हो रहे थे, उससे किसान भी बहुत एनकरेज हो रहे थे।
तो रियली टू प्ले अ डेविल्स एडवोकेट प्रतिभा ताई, व्हाई ऑर्गेनिक? आपने कहा विष मुक्त करने के लिए, मगर एज अ कंज्यूमर मैं क्यों ऑर्गेनिक सब्जी लूं, क्यों ऑर्गेनिक दालें लूं, जब मुझे बाहर दुकान में वही दाल सस्ते दाम पे मिल रही है और मुझे न्यूट्रिशन लेवल पे परहैप्स सेम चीज मिल रही है, मैं क्यों लूं, क्यों मैं ऑर्गेनिक के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करूं?
ये प्रश्न मतलब जायज है, और ये प्रश्न सभी लोग पहले करते ही हैं, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक का दाम थोड़ा विषैली खेती है उससे जो उत्पाद आता है उससे ऑर्गेनिक का जो उत्पाद है उसका दाम थोड़ा बड़ा ही है, थोड़ा ज्यादा होता है। ऑब्वियसली सब लोग ये क्वेश्चन करते ही हैं, बट इसमें ना हमको हमारी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो ये एक प्रश्न फिर धीरे धीरे अलग स्वरूप लेगा। स्वातंत्र्य पूर्व काल में हमारे भारत में जो खेती होती थी वो नेचुरली ही होती थी, उसमें कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स या ऐसी विषैली चीजें नहीं डाली जाती थी। फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स जो डालते थे उसमें गाय का गोबर, उससे बना खाद, गोमूत्र या दशपर्णी अर्क या ब्रह्मास्त्र नीमास्त्र, जो निसर्ग से मिलने वाला रॉ मटेरियल है उसी से ही ये कुछ बना के खेती में यूज करते थे। ये हमारे खेती का असल स्वरूप है। बट पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और पूरे विश्व की जो क्या बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटस या जो भी कुछ बदला धीरे धीरे, तो उसमें ये केमिकल फार्मिंग आई। केमिकल फार्मिंग क्यों आई, अगर इसका मूल ढूंढने जाएंगे ना तो हम ये पाएंगे कि इसका कारण भी हम ही हैं। क्योंकि देखो नेचुरल फार्मिंग में जो फ्रूट्स आते हैं ना वो एक जैसे नहीं होते, वो छोटा बड़ा होता है, वो उसका जो स्वाद होता है ना वो एकदम टिपिकल होता है। जैसे अब देसी टमाटर हम खाते हैं तो देसी टमाटर का स्वाद एकदम खट्टा मीठा, उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, उसका पकने के बाद में उसका जो ऊपर का छिलका होता है ना वो एकदम नरम होता है। तो इतना इजी नहीं होता है कि पके हुए देसी टमाटर को ट्रांसपोर्टेशन करके कंज्यूमर के पास ले जाए। वो जब कच्चे होते हैं तभी उसका ट्रांसपोर्टेशन सही ढंग से हो पाता है। ये सारी दिक्कतें किसान भाइयों को पता थे, लेकिन हमको कैसे चाहिए थे, हमको बहुत मजबूत वाले टमाटर जिसका रंग रेड रेड हो और बड़े बड़े हो, छोटे ना हो, काटने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सब सहूलियत जब कोई कंज्यूमर मांगता है तो उसी तरह का उत्पाद उगाया जाए ऐसा किसान सोचता है। और यही मांग के रहते हुए किसानों ने फिर संकरीकरण शुरू किया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब ओरिजिनल जो देसी बीज है ना, देसी बीज में उसके जीन्स में कुछ बदलाव करके जो आने वाला उत्पाद है ना वो उस तरह से मिला सकते हैं। बट आने वाले उत्पाद से जो कुछ बीज मिलेगा हमको वो नॉट नेसेसरी उससे दूसरा पौधा आएगा। मतलब अगर संकरीकरण या हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं तो हम हमारा देसी बीज को नष्ट कर रहे हैं हमारे ही हाथ से। जब लोगों ने इसका डिमांड किया तो लोगों को ये पता नहीं था बीज वृक्ष परंपरा क्या है, और किसान इतना मजबूर था कि अगर वो डिमांड वाला उगाएगा नहीं तो उसका उत्पाद कौन खरीदेगा। मतलब ये हमने ही हमारे हाथ से हमारे लिए गड्ढा खोद रखा है, ये हमारे ध्यान में आएगा, है ना। जब धीरे धीरे कंज्यूमर लोग ये समझने लगे कि नहीं पौष्टिकता उसमें नहीं है, पौष्टिकता तो देसी बीज में ही है, तो धीरे धीरे ये मांग भी फिर हमारे कुछ हैंडफुल किसानों की तरफ गई कि भैया आप ऐसे ही उगाइए, है ना, जितना हमको जरूरत है हम आपको बताएंगे आप उतना उगाइए, बाकी का आप उगा के मार्केट में बेचिए। तो धीरे धीरे शुरुआत ऐसा हुआ, क्योंकि 15-20 फैमिली है उनकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, अगर उनके रिक्वायरमेंट ही फुलफिल करने के लिए कोई किसान लगता है तो तो किसान के फैमिली की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं होने वाली है
हम्म,
ना, क्योंकि उसका भी तो घर चलना चाहिए ना। अगर उसका घर चलेगा तो ही वो खुश होके खेती करेगा। जो हमारा अन्नदाता है अगर वो दुखी रहेगा तो वो कौन से भाव से हमको सब्जी और अनाज देगा, वो क्या भाव हमको एक्सेप्टेबल है। मतलब बहुत डायमेंशन है सोचने के, और हर एक डायमेंशन में हमको बहुत गहराई से सोचना होगा कि हमारी प्लेट कैसी होनी चाहिए और जो हमारा अन्नदाता है उसका मन कैसा होना चाहिए देते समय। ये सब चलते हुए ऐसी चर्चाएं हम व्हाट्सएप ग्रुप बना के करते थे, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लैरिटी बनती गई ना, वैसे वैसे फिर कंज्यूमर की डिमांड भी देसी की तरफ झुकती गई। और अब किसान, मुझे 7 साल का समय लगा कि अब किसान संकरीकरण या हाइब्रिडाइजेशन की तरफ नहीं झुकते हैं, वो बीज नहीं लाते हैं। बट ये जो गावरान और देसी बीज है ना, वो उगाने के लिए भी बहुत परिश्रम है, कठिनाई है, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ गया है, मिट्टी की क्वालिटी वो नहीं रही है, हवा की क्वालिटी बदल गई है, पानी भी दूषित हो गया है। और इसका कारण अकेला किसान नहीं है, इसका कारण हम लोग भी हैं, क्योंकि हमारे घर में सुबह से लेकर शाम तक हम कितना केमिकल यूज करते हैं, और वो सारा पानी कहाँ जाता है? सार्वजनिक नदियों में, नालों में, और अल्टीमेटली वो खेती में भी जाता है। तो अगर हमको ऐसा नेचुरल अनाज चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बहुत बड़ी है कि हम दूसरों को ना बोले कि हाँ कैसा उगाएं, हम खुद वैसा जिए कि मेरे घर में जहर नहीं आना चाहिए, मेरे घर से जो पानी जाएगा, हवा जाएगी, वो दूषित ना हो, वो जहरीली ना हो। तो ये सारी ना बहुत लिंक हुई हुई बातें हैं, जो एक सर्कल से हम शुरू करते हैं ना, तो ऐसा बहुत गोल फिर के फिर से हम वो कांटा हमारी तरफ आता है। अगर हम कुछ राइट मांगते हैं हमारा, तो उसके साथ में बहुत सारी ड्यूटीज भी अटैच हो जाती है। तो एक राइट हमको उपभोग करने के लिए हमको कई सारी ड्यूटीज भी निभानी पड़ती है। अगर हम ड्यूटी में छूट जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि राइट्स भी हम उतने आनंद से नहीं ले पाएंगे।
ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि भाई आपने फर्टिलाइजर नहीं यूज किया, यहाँ तक सीमित नहीं है कि वो इस ये भी है कि आप बीज कहाँ से लाते हो, कौन सा बीज यूज करते हो, प्लास्टिक यूज नहीं करते हो, किसी भी किस्म का केमिकल यूज नहीं करते हो, आपके फार्म के आसपास स्पेस हो जहाँ जहाँ बिल्कुल लग के भी कोई केमिकल फार्मिंग ना चल रही हो। तो ये इस तरह के कौन से और कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आम ग्राहक को समझ में ही नहीं आती है, एंड 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 देयरफॉर वो प्योरिटी कहाँ से आ रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो वो भी थोड़ा सा आप अगर
फार्मर के साइड में देखे जाए तो मैंने जितनी जर्नी देखी उतना कि नेचुरल बीजों को कंजर्व करना बहुत कठिन है। अगर नेचुरल बीजें थोड़ी थोड़ी बहुत कंजर्व करके रखी है, उसको अगर एक बार में सो कर दिया, बारिश आई और सब बह गया, तो उसके पास में फिर नेचुरल रिजर्वायर नहीं होता है बीज को, मतलब कहाँ से लाए बीज। बहुत स्कैरसिटी है नेचुरल बीजों की, तो ये सारी अड़चनें उनके पास भी है। ऐसे केस में फिर हमको अनाज तो चाहिए, फल तो चाहिए, फिर उनके पास में बाजार में जो मिलता है उसके सिवाय कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। इसी मतलब ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें उनके साइड में भी हैं, है ना। कुएं का पानी इस कदर खारा हो गया है कि अगर वो हम किसान भाई अगर जमीन में डालते हैं कुएं का पानी, तो उत्पाद अच्छा नहीं आता है, ये देखा गया है। कई कई जैसे एक किसान भाई है हमारे, संतोष गदादे दादा, उनके यहाँ पे साइड बाय साइड नदी बहती है, तो नदी का पानी अभी प्योर है, लेकिन नदी में जो बांध बना है उसके बाद में अगर वो पानी देखे जो शहर के आसपास वाला एरिया टच करता है, तो वहां का पानी तो नाले से भी बदतर है। तो कैसे करेंगे इसको, है ना। नेचुरल अगर हमको खाना है तो जिम्मेदारी हमको लेनी ही होगी। एक तो ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत इश्यू है ना। खेती कहाँ होती है और हम कंज्यूमर शहर में होते हैं, वहां से अगर किसान भाइयों को सब्जी ट्रांसपोर्ट करके शहर में लाना है, तो वो सब्जी भी मतलब फ्रेश चाहिए हमको, तो उसके लिए किसान भाइयों को आदि मतलब सैटरडे मॉर्निंग से हार्वेस्टिंग शुरू होती है, रात तक हार्वेस्टिंग चलती है, फिर उसको सब्जी को धो, सब मतलब बांधो, उसकी जुड़िया तैयार करो, रात को ठीक से लगाऊं, और रात को 3 साढ़े 3 बजे निकलते हैं लोग और पुणे में आते हैं, है ना। तो ये सब जो है ना, उसके श्रम का मूल्यांकन होना इसलिए जरूरी है। वो हमको एक पेंडी दे रहा है 25 रुपए में, तो 25 रुपया मत देखो, वो 25 रुपया मतलब वो जुड़ी बांधने के लिए उसने सैटरडे मॉर्निंग से लेकर तो संडे मॉर्निंग हमारे हाथ में देने तक जो श्रम किया है ना, वो श्रम हमारे बैक माइंड में आना चाहिए कि हमको एक जुड़ी महज 25 रुपए में मिलती है, उस पर भी हम बार्गेनिंग करना चाहते हैं। मतलब हम उसका श्रम का कदर नहीं कर रहे हैं। जैसे माँ ने घर में खाना पकाया और कोई कह दे कि आज की बिल्कुल बकवास बनी है सब्जी, कैसा फील करेगी ना माँ? बिल्कुल उसी तरह से है ये फीलिंग जब हम किसानों को बार्गेनिंग करते हैं ना, स्पेशली नेचुरली नेचुरल फार्मिंग करने वाले किसानों के साथ बार्गेनिंग करते हैं ना, तो वो यही फीलिंग है। एज अ कंज्यूमर जब मैं डिमांड करती हूँ नेचुरल और विष मुक्त खेती के मतलब उत्पाद की, तो मुझे कुछ, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले कहा कि ड्यूटीज एंड राइट्स, अगर हमारा हक है कि हम नेचुरल की डिमांड करते हैं, तो उसके साथ में हमारे कुछ कर्तव्य भी जुड़ जाते हैं। तो कर्तव्य क्या चीज है, तो हमको ये समझना होगा पहले से कि अगर मुझे विष मुक्त खेती के अनाज चाहिए, तो मेरा जीवन भी विष मुक्त होना बहुत जरूरी है। मतलब मैं घर में अपने विष यूज कर रही हूँ, और मैं दूसरों को ये चाह रही हूँ कि आप विष मुक्त रहे, आप विष मुक्त खेती करें, और मुझे विष मुक्त अनाज मेरे घर में लाके दे, और मैं तो दूसरा विष यूज करूंगी, तो ऐसा नहीं चलने वाला दी। ये क्या होगा, ये अन्याय हुआ है। ये अन्याय ना ना कि हम किसान पे कर रहे हैं, बट ये अन्याय हमारी धरती माता पे है, ये हमारे बॉडी के साथ में अन्याय है, ये हमारे ईमान के साथ में अन्याय है ना। अगर हम विष मुक्त ही रहना चाहते हैं, तो हमारे घर में जो एक एक जहरीली चीज है उसको हमको अल्टरनेटिव देना होगा। ये सारी जर्नी है ना, ये ऐसे ऐसे नहीं होती, मतलब फटाक से कुछ एक रात में बदल जाएगा ऐसा नहीं है। हमको पहले तो सोचना होगा कि क्या क्या हम चीजें यूज कर रहे हैं, क्या क्या हार्मफुल है। फिर ये चीजें अगर हमको निकालनी है, तो पूरे फैमिली का कंसेंट लेना होगा। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही हेल्दी और फ्रूटफुल कन्वर्सेशन होता है फैमिली में। तब बच्चों को भी ये ध्यान जाता है कि अरे हाँ सच्ची में ये ऐसी बात है। और देखो अल्टरनेटिव जब जितनी क्या बोलते हैं इंथुजियाज्म से हम नहीं निकालते, उतनी ही उत्साह से बच्चे निकालते हैं इसका अल्टरनेटिव। अगर हमको नेचुरल ग्रो की हुई सब्जी या उत्पाद चाहिए, तो हमारे घर में आने वाला कोई भी विषारी पदार्थ हम ना यूज करें, ये पहले कमिटमेंट मुझे मुझसे करनी है। क्योंकि उसकी लिंक ना अल्टीमेटली हवा पानी मिट्टी से मिलती है। अगर मैं टूथपेस्ट यूज कर रही हूँ जो कि जिसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं, तो अल्टीमेटली पानी जो मैं यूज कर रही हूँ मुंह धोने के लिए, वो पानी कहाँ जाएगा? आउटलेट में जाएगा। वहां से वो बाहर वाले आउटलेट में जाएगा, वहां से वो नदी नाले में बहते हुए थे कॉमन रिजर्वायर जो है अर्थ पे के, धरती माता पे के, उसमें वो मिल जाएगा। तो कितना रिजर्वायर हम दूषित कर रहे हैं, और वही रिजर्वायर का पानी फिर नदी का पानी, ये तालाब का पानी किसान भाइया यूज करते हैं ना अपनी सब्जी उगाने के लिए। तो अल्टीमेटली मैं उनसे चाहती हूँ कि आप विष मुक्त दे, लेकिन उस पानी में तो मैं ही जहर घोल रही हूँ। तो ये सर्कल हमको समझ में आना बहुत जरूरी है। ये जैसे जैसे ये सर्कल हमको समझ में आता है ना, वैसे वैसे फिर हम भी उन किसानों की खेती नेचुरल हो जाए, इसके लिए फिर हमारा भी एफर्ट शुरू हो जाता है। हमारे ये समझ में आता है कि हमारे घर से अगर केमिकल निकालना कितना कठिन है, उतना ही वो किसान के लिए उसकी खेती से केमिकल निकालना कठिन है। नेचुरल चीजें यूज करनी है, तो उसके लिए एफर्ट भी लगता है। जैसे बबूल की अपन छोटी सी डंडी लाते हैं दांत घिसने के लिए, तो उसको अपने को बबूल का पेड़ ढूंढने जाना पड़ता है, नीम का पेड़ ढूंढने बाहर जाना पड़ता है, वहां से जाओ डंडी काट के लाओ, उसकी सफाई करो, और फिर उसको इस तरह प्रिजर्व करो। वो भी सालों भर के लिए हम प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, है ना। एक 15 दिन की दातुन हम ला सकते हैं। तो ये एफर्ट्स लेना भी हमको जरूरी है। तो कई चीजें हैं, शैम्पू है, हार्पिक जैसे हार्ड केमिकल्स हैं जो पानी में मिलके उनको वाटर को हार्ड बना देते हैं, है ना। मिट्टी में ऐसा, जैसे हमने कुछ घर में पकाया, अगर उसमें ऐसे कुछ केमिकल्स प्रिजर्वेटिव है जो डंप यार्ड में जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे, तो मिट्टी खराब कर देंगे, है ना। तो सड़ी गली चीजों से जो बदबू आएगी वो हवा को खराब कर देगी, है ना। तो केमिकल वाला खा के या केमिकल वाला जब सड़ता है ना, तो उसका स्मेल देखो कितना बेकार सा आता है, क्योंकि वो सब सड़ने की प्रक्रिया होती है। जब नेचुरल चीज खराब होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सड़ने की मतलब खराब होने की प्रक्रिया में हम उसको डिकम्पोजिशन में बदल सकते हैं, अगर हमारी हम अवेयर है तो इस तरह से ये जिम्मेदारी कंज्यूमर पे भी है। लास्ट 7 सालों से किसानों के साथ में काम कर रही हूँ और लोगों के साथ में भी इंटरेक्शन है, तो यहाँ लोगों को भी अवेयर करना और किसानों का साहस बढ़ा रहे इसीलिए उनको मोटिवेट करना और उनको अलग अलग डायमेंशन में सपोर्ट करना, मॉरली भी, थोड़ा फाइनेंशियली भी, थोड़ा वस्तु के स्वरूप में भी, ये मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो उसके लिए एफर्ट मुझसे जाना चाहिए। तो चैलेंजेस तो है, बहुत है, दोनों साइड में है, कंज्यूमर साइड में और फार्मर साइड में।
इस तरह की थिंकिंग विक्रेता और खरीदी करने वाला इससे कहीं दूर की है। इट्स बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट। इट्स लाइक जिसको एक टर्म कहते हैं, भैया जिसको कहते हैं, कि ये पूरी एक हम लोग वननेस है। ये इस तरह के ख्याल आपके पास कहाँ से आया है? थोड़ा सा पर्सनल उस पे जाते हैं कि भाई आप तो एस्ट्रोफिजिक्स सिखा रही थी, प्रोफेसर थी, अच्छी जॉब थी, वहां से ये इस तरफ का मोड कहाँ से आया कि भाई थोड़ा पूरे ही धरती के लिए, पूरा एनवायरनमेंट के लिए सोचे, वननेस, हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी लेनी है, ये इस तरह की सोच कहाँ से आने लगी?
वो खोज ना मुझ में पहले से थी, है ना। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तभी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, बट मुझे सामान्य व्यक्ति जैसा जीना है ना। मुझे कुछ अच्छा करना है बट मुझे हटके नहीं जीना है, क्योंकि मैंने देखा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के पास में ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं होता है। वो ऐसा ही सहजता से किसी फ्रेंड के साथ में बात नहीं कर सकते हैं ना, तो वो मैं नहीं चाहती थी वो। लेकिन मुझे क्या करना है इसकी क्लैरिटी नहीं थी। मैंने आपसे बताया कि मैं टीचिंग में इन्वॉल्व थी, है ना, शुरू से ही मेरी ट्यूशंस या क्लासेस थे, 13 साल तक मैंने बच्चों को पढ़ाया है। तो ये 1-to-1 जो बच्चों को पढ़ाने का आनंद है ना, मुझे बहुत अच्छा मिलता था। मैंने अभी पीछे मुड़ के देखती हूँ ना ताई, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ या साइंस पढ़ा रही हूँ, तो मैं बहुत अच्छा कुछ कन्वे कर रही हूँ। इसका आनंद मुझे नहीं था, मुझे ये आनंद था कि वो बच्चा खुश हो रहा है मैं पढ़ाने से, है ना। वो चाहता है कि मैं उसको कुछ पढ़ाऊं। वो जो हमारी बॉन्डिंग थी ना, वो बॉन्डिंग गहराती गई तो वो मुझे खुशी देती थी। मैंने ये भी देखा कि जब बच्चा खुश होता है ना, मैं बुक पढ़ने से उसको समझ जाता है कि ये टॉपिक क्या है। जब बच्चा अंदर ही अंदर दुखी होता है और वो क्लैरिटी में नहीं होता है तो वो पढ़ के भी समझ नहीं पाता है। तो ये जो वननेस है ना, जो आपने कहा है वननेस, या फिर ज्वाइनिंग हार्ट टू हार्ट, ये वाला मुझे ऐसा लगता है वो मुझे पहले में था, पहले से ही था, बट उसको मैं क्लैरिटी से समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या बात है। मेरा एक स्टूडेंट था जो बेचारा एग्जाम के नाम से कांपता था। एग्जाम आती थी ना तो उसको फिट्स आते थे, तो किसी ने बताया कि या प्रतिभा कोलते करके है, ट्यूशंस लेती है, आप अपने बच्चे को वहां डाल के देखिए। तो वो बच्चा मेरे पास आके पढ़ने लगा और नॉर्मली जैसे मैं सबको पढ़ाती हूँ वैसे मैं उसको पढ़ाने लगी, और उसकी एग्जाम आई तो मैंने उससे कहा कि जाके देके आओ, जो भी मार्क मिले मिले, है ना। अगर नहीं जाने से अच्छा है कि जाके कुछ लिख के आओ, देखो तो सही कि आपको लिखने बनता है कि नहीं, है ना। नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, क्या है। तो उसको इस तरह से मोटिवेट करके मैंने भेजा, बट सरप्राइजिंगली उसने उस साल 67% मतलब फर्स्ट क्लास में वो पास किया। और मुझे उसकी मम्मी बता रही थी कि ये 2 साल के बाद में एग्जाम के लिए अपेयर होने के लिए मन से तैयार हुआ है। मैं अंदर से ही जानती थी कि इसका प्रॉब्लम स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो कुछ अलग इसमें अटका हुआ है ना। बट उसका सोल्यूशन उसको मिलते ही उसका पढ़ाई में मन लगने लगा। ये वाकिया लोगों ने सुना और फिर ना मेरे पास में ट्यूशन की बहुत सारी इंक्वायरी आने लगी। मुझे ये पता चला कि मुझे जेन्युइनली वो सब्जेक्ट सिखाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि वो बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है। तो धीरे धीरे ये बात जैसे जैसे मुझे ध्यान में आने लगी, तैसे वैसे लोगों ने मुझे फिर एक काउंसिलर एक नाम दे दिया। तो मैंने 1-to-1 काउंसिलिंग की, नॉट एज ए प्रोफेशनल, बट जो लोग संपर्क में आते थे वो लोग बताते कि थे कि आप मेरे बेटे से बात करो, कुछ प्रॉब्लम है। और ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता था बच्चों के साथ में, उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं बट वो डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है ना बच्चों के साथ में इंटरेक्शन का, वो मुझे कॉलेज में नहीं मिला। मेरी पीएचडी होने के बाद में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब करना चाहा, बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन, पढ़ाने का सेटिस्फेक्शन बच्चों में नहीं मिला, बड़े बच्चों में नहीं मिला, बट इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया। और मैं और हस्बैंड दोनों भी हम साथ में ये चाहते थे कि बच्चों के लिए और क्या अच्छा किया जाए। तो ऐसे ही शोध में थे हम, तब हमको एक वर्कशॉप के बारे में इंफॉर्मेशन मिली जो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताया। एक वर्कशॉप है जिसमें एजुकेशन क्या है, उससे हमारी अपेक्षा क्या है, और एजुकेशन कहाँ फेल हो रहा है और क्यों फेल हो रहा है, इसकी सारी चर्चाएं थी। हमने वो अटेंड किया और उसमें मुझे ऐसा लगता है मेरी देखने की दृष्टि है ना उसमें चेंज आने लगा। जैसे आपने अभी कहा है कि वो एरिया वाइड होने लगा देखने का, है ना, पहले यहाँ तक सोचती थी है ना मेरे लिए, फिर ऐसा दायरा उसका बढ़ने लगा। मुझे ऐसा लगा कि खाली वर्कशॉप, 7 दिन का वर्कशॉप मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, मैं इसको थोरोली समझूं। स्वर्गीय श्री ए नागराज जी ने ये दर्शन लिखा है जो एजुकेशन को फोकस करके लिखा है उन्होंने, तो उनकी 14 किताबें हैं, पूरे 14 किताबों का पठन और उसको सघनता से समझने के लिए मैंने साल भर लगाया। मैं वहां गई, उनके साथ में रही, किताबें जा पढ़े थे जो समझा रहे थे, उसके सानिध्य में जाके मैंने ये किताबों को समझना चाहा और समझी। उसमें से मुझे ऐसा लगा कि मैंने पीएचडी किया है बट मैं ये नहीं जानती कि मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है। मैंने पीएचडी किया है बट कपड़ा जो मैं पहनती थी उसका रीजन क्या है, क्यों कपड़े पहनना चाहिए, ताकि सिलेक्शन कैसा हो, इसकी क्लैरिटी मुझे नहीं थी। कपड़ा पहनने गए तो हमेशा फैशन हावी हो जाती थी कि आजकल क्या करंट में है, उस तरह से का कपड़ा लो। ऐसी बहुत, मेरा ही जीवन मेरे सामने जैसे मैं देख रही थी और मुझे ऐसा लगा था कि सभी चीजों में मुझे अभी बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो ऐसा बदलाव कहाँ से शुरू करें, तो मुझे ऐसा लगता है हेल्थ सबका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हॉट टॉपिक है, तो हेल्थ से मैंने शुरू किया। मेरा किचन मैं विषमुक्त करने से मैंने ये जर्नी शुरू किया और वो जर्नी फिर ग्रुप का स्वरूप लेके आज यहाँ तक है। खाली खाना पीना ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी समझ में आया, हमारे विचारों में प्यूरिटी होना भी बहुत जरूरी है। आज का मेडिकल साइंस भी बताता है कि 99.9% जो रोग है ना वो साइकोसोमैटिक है, माने तुम्हारे विचारों से ओरिजिनेट होते हैं। जैसा हम सोचते हैं उसका परिणाम अपनी बॉडी पे होता है ना। अगर हमारा मन खराब है और हम बहुत कुछ सात्विक खा रहे हैं तो हमारे बॉडी को वो लगता नहीं है ना। हमारा अगर विचार डिस्टॉर्टेड हो जाए तो हमारी अंदर की आते भी आतो मतलब इंटेस्टाइन, वो भी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, उसका फंक्शन वो ठीक से कर नहीं पाती। अगर उसका फंक्शन ठीक से ना हो, बॉडी में ठीक से एब्सॉर्प्शन ना हो, तो हेल्थ कैसे ठीक रहेगी। तो स्वयं की इंटरनल जर्नी मतलब प्यूरिटी, विचारों में प्यूरिटी आए उसके लिए भी काम करना खुद के ऊपर, और कि जो शरीर को पुष्टि दे ऐसा अनाज खोजना और ऐसा अनाज उत्पादन करने के लिए किसान भाइयों को उत्साहित करना, ये सारी बातें मुझे मेरी जिम्मेदारी लगती है। मतलब 7 साल की जर्नी में जो कुछ भी मैंने पाया वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो ऑटोमेटिक मोड पे चला जाए। अभी भी इन किसान भाइयों को हमारे सपोर्ट की जरूरत है। अगर हम हमारी डिमांड इसी तरह से रहेंगे रखेंगे कि हमको नेचुरली चाहेंगे चाहिए, तो इनका कोई बच्चा भी खेती करने के लिए तैयार होगा। अगर हमारी अगली जनरेशन अगर ये नेचुरल की डिमांड नहीं करेगी तो शायद किसान भाइयों की अगली जनरेशन भी फार्मिंग नहीं करना चाहेगी। दिक्कतें इतनी है इसमें सारी, इसमें तो एक समझ में आता है कि 7 साल पहले जब जर्नी शुरू की थी तो कोई किसान भाई ये नहीं कहता था कि दीदी मैं मेरे बेटे को भी किसान बनाऊंगा, बट अभी 7 साल के बाद में हमसे जुड़े हुए किसान के कुछ बच्चे बोलते हैं कि मुझे फार्मिंग ही करना है। तो ये हमारे लिए जिम्मेदारी की बात है। अगर वो फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी कि उनका भी घर, उनका चूल्हा जलता रहना चाहिए। तो इस तरह से ये जर्नी है, ये अस्तित्व कैसा है, मानव क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, मुझसे मेरा पेश ये पशु पक्षियों से क्या नाता है, मेरा पेड़ पौधे से कैसा नाता है, मेरा हवा पानी और इस पहाड़ जंगल से क्या नाता है, मेरा हर मानव के साथ में क्या नाता है, और मेरा मुझसे कैसा नाता है या कोऑर्डिनेशन है। ये सारी चीजें उस किताबों में लिखी हुई थी जो मध्यस्थ दर्शन नाम से मतलब प्रकाशित है। तो उससे ये सारा विचारों का फ्लो शुरू हुआ और आज भी मैं उसी को समझने का प्रयास कर रही हूँ, जितना समझता है उसको जीने की कोशिश कर रही हूँ।
तो आपका ये जो पूरा साल भर का वहां पे स्टे रहा, वो ऑलमोस्ट कि आप स्टूडेंट लाइफ में चली गई फिर से, और वो ऑलमोस्ट लाइक अ गुरुकुल रहा होगा। मराठी में कहते हैं ना, रुजत, एक दे रुजत, बिकॉज यू वर देयर फॉर अ होल ईयर, आप में वो सीख होते गया कि वो आप सोख इन करती गई। थोड़े से ऐसे प्रिंसिपल्स जो जो सबको पता होते हैं, बट इट्स स्टिल ओ यस।
जैसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे स्ट्राइक हुई, समझ में आई। जैसे हमको पता तो होता है बट हम इतने अंधे होते हैं कि हम उसको देख नहीं पाते। प्रकृति ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। प्रकृति में अगर हर एक चीजों को हम ठीक से आंखें खोल के देखें कि वो कैसा जी रहे हैं, तो हमको बेसिक प्रिंसिपल ये निसर्ग के पता चलते हैं। तो ये जो दृष्टि है ना, वो दृष्टि मुझे उनसे मिली। जैसे छोटा सा बात है कि हम बीज लगाते हैं मिट्टी में, है ना, मिट्टी में बीज अंकुरित होता है, उसका बड़ा पेड़ होता है। वो पेड़ बढ़ते समय या अंकुरित होते समय जमीन में उसके लिए पोषक तत्व होते हैं, मिट्टी होती है, पानी होता है और एटमॉस्फेयर में हवा होती है। बढ़ने के लिए वो पेड़ पौधा कितना लेता है और हमारे लिए जो अवेलेबल है उसमें से हम कितना लेते हैं। तो ये मानवीय स्वभाव के जो गलत पहलू है ना, वो मेरे समझ में आए। वो पेड़ कितना लेता है, महज उतना उसकी उतनी जितनी आवश्यकता है उसकी उतनी ही वो लेता है। हमारा देखो कैसा सोच है, अगर कहीं फ्री में मिल रहा है, बाय वन गेट वन फ्री है, हमको आवश्यकता है या नहीं है इसका भी नहीं सोचते। हम जस्ट हम बटोरना चाहते हैं। इस बटोरने के क्रम में या ऐसे संस्कार ने फिर धीरे धीरे मानव ने एक दूसरे का शोषण कर, मतलब वो न जानते अजानते पड़े पड़ते शोषण करते हुए, मतलब मैं जानता नहीं हूं लेकिन मैं अनजान बनकर ही दूसरों का शोषण करता हूँ। मुझे चाहिए मुझे चाहिए कि जो है ना, आवश्यकताओं पे ध्यान न देते हुए ये जो हमारा संस्कार है ना, ये हमको कहाँ लेके जा रहा है कि समाज में गरीब और श्रीमंत इसमें खाई जो है ना वो बढ़ती जा रही है। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेल्थ है। पैसों का उतना ही महत्व है जितना एक सामान्य कागज का। अगर वो करेंसी को आज सरकार ने घोषित कर दिया कि इसकी वैल्यू जीरो है, तो वो कागज की वैल्यू जीरो हो जाती है। रुपए पैसों की वैल्यू नहीं है, वो रुपए पैसे देकर हम कुछ साधन खरीदते हैं वो वैल्यूएबल है ना। तो वैल्यू किसको देना चाहिए, जो निसर्ग से मटेरियल आता है ना उसको वैल्यू हम देना चाहिए। अगर वो मटेरियल हमको मिलता रहे ऐसा हम चाहिए, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं, तो वो नेचर को कॉन्जर्व करना फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि देखो, आंख अच्छा देखती है तो वो बटोरना चाहती है, नाक अच्छा सूंघता है तो वो बटोरना चाहता है, जीभ अच्छा टेस्ट लेना चाहती है तो वो अड़म धड़म खाना चाहती है ना। स्पर्श अच्छा लगता है तो हम बहुत कुछ, ये मुलायम है तो इसको भी ले लो उसको भी ले लो, ऐसा चीजें बटोरते जाते हैं। दूसरा, उन्होंने कुछ टैगलाइंस दिए हैं, है ना, जैसा हम सुनते आए हैं, जियो और जीने दो। उन्होंने कहा है जीने दो और जियो। तो जीने दो और जियो ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जब तक मेरा जीना दूसरों के जीने के लिए सहायकारी नहीं होता तब तक मेरे जीने की कोई सार्थकता नहीं है। अगर मेरा जीना दूसरे के जीने के आड़े आ रहा है या दूसरे के अस्तित्व को मिटा रहा है, तो मैं जी नहीं रही हूं, मैं उसका शोषण कर रही हूं। धीरे धीरे जब मुझे मेरा जीना समझ में आता है, उतना ही मैं दूसरे के जीने को समझ पाती हूँ।
और ये दूसरा सिर्फ सिर्फ मनुष्य जीव नहीं है,
नहीं है
भी
सभी,
है, प्लांट्स भी है, एनिमल।
जैसे चलते चलते उगच अपन झाडाची पानं काढतो, म्हणजे हम पत्तियां तोड़ लेते हैं ऐसे ही फेंक देते हैं, ऐसे ही फूल उठा लिया उसका पेटल्स तोड़ के फेंक दिया। बहुत कुछ ऐसी अनजान में हम चीजें करते हैं जो नेचर के किसी चीज का अस्तित्व हम धोखे में लाते हैं। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ये कहा है कि हर समय अपना ध्यान अपने पर ही रहे। जब ध्यान बाहर चला जाता है ना, तो हम दूसरे के लिए सोचना शुरू करते हैं और दूसरों को ही देखना शुरू करते हैं। बट ध्यान अगर हमारा हम पे ही टिका रहे हर समय, मतलब जब इंटरेक्शन हो तो तब थोड़ा बहुत ध्यान बाहर जाता ही है, बट हर समय अगर हम हमारे विचारों को, हमारे भावों को देख पाए, तो हम ये फिर ध्यान भाप पाते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही सही है या नहीं है। ये मुझे लाइन बहुत भा गई कि जीने दो और जियो। मैं क्यों जी रहा हूँ इसका आंसर भी मेरे पास में नहीं है, क्योंकि मुझे मृत्यु नहीं आ रहा है इसलिए मैं जी रहा हूँ, ऐसा कॉमन आंसर लोग देते हैं। बट मैं एक मानव हूँ, एक इस निसर्ग की सर्वोच्च प्रगत इकाई हूँ, मैं एक यूनिट हूँ। मेरा मेधस जितना कॉम्प्लिकेटेड और उन्नत है, उतना किसी और एंटिटी का नहीं है इस निसर्ग में। तो अगर इतना उन्नत बॉडी और ब्रेन मुझे मिला है, तो उसका मैं क्या उपयोग करूँ? मानव को क्यों इस धरती पे लाया गया है? उन्होंने ये कहा कि ये आप खुद में जांचे, मैं कह रहा हूं इसलिए माने नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जांचने की प्रोसेस मैं खुद में शुरू की ना, तो मुझे धीरे धीरे मेरे हर एक प्रश्न का उत्तर मिलता गया। आज भी मैं उसी प्रोसेस में लगी हूँ। इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, है ना, कि जब तक हम एक प्योरिटी अटेंड नहीं कर लेते, है ना, हमारे विचारों में शांति अटेंड नहीं कर लेते ना, जीते हुए जब तक हम समाधानित नहीं फील होते, तब तक मनुष्य का जन्म है ना। संत महात्मे, राम कृष्ण, हमारी परंपरा बहुत थोर है। ये कौन थे? ये तो आदमी ही थे ना, हम मतलब हमारे जैसे, लेकिन उनका जीना, उनका विचार इतना, उनका जीना इतना उन्नत था, उनके विचार उन्नत थे, इसलिए आज हम उसकी, उनकी पूजा करते हैं। तो मुझे ये भी वहां से पता चला कि पूजा करना मतलब क्या। तो उन्होंने बताया पूजा का मतलब है किसी आदमी में, या फिर गणपति का हम पूजा करते हैं तो उनके कुछ गुण हमको भा जाते हैं जो हमको श्रेष्ठत्व दिखाते हैं। वो श्रेष्ठत्व मुझ में आ जाए इसके लिए मैं प्रयासरत रहती हूँ, तो इसी को पूजा कहते हैं। ये डेफिनेशन मुझे बहुत भा गई और फिर पूजा को देखने का मेरा दायरा ही बदल गया। हमारे पास में अगर ये ह्यूमन मानवीय कुछ मूल्य आ जाते हैं जीने में, तो एक कॉन्फिडेंस बन जाता है कि मैं, मतलब मेरा जीना मैं बिल्कुल समृद्ध कर लूंगा। क्योंकि देखो, कुछ भी छोटा काम करने की लाज नहीं बटत, मतलब शर्म नहीं लगता है कुछ भी अच्छा काम करने की, छोटा हो या बड़ा। मेरी आवश्यकता को मैं ठीक से जान पाता हूँ, तो उसको उपार्जित करने का जिम्मेदारी मेरा है, तो मैं कर पाता हूँ उसको। अगर मैं खुश रह पाता हूँ, तो इसका कॉन्फिडेंस बनता है कि मैं दूसरों को भी खुश रख सकूंगा। कैसे? क्योंकि वो जर्नी मैंने खुद में की है। इस रास्ते पे जो मैं चलना सीखी हूँ या चल रही हूँ, वो मुझे ना डे बाय डे एक शांति की ओर ले जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि इसी बात से मैं दुखी नहीं होती, परेशान नहीं होती, बट वो जो टाइमिंग है ना, वो बहुत रिड्यूस हो रहा है। और वो परेशानी क्या है, इसको मैं अभी जान पा रही हूँ, है ना। किसी के शब्दों से दुखी होना, किसी के बिहेवियर से दुखी होना, ये अभी बहुत होता नहीं है। आपने पूछा कि क्या क्या बातें छू ली, तो मेरे पास में इतनी लंबी लिस्ट है ना ताई, कि मैं बोलना चाहूँ तो बोलती ही रही हूँ।
कमिंग बैक टू फार्मिंग एंड फार्मर्स, आपको बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के लोग मिले होंगे इस जर्नी में, और आपने कई दादाओं के एग्जांपल्स दिए मुझे। किसी का आपने एग्जांपल दिया जिन्होंने अपना आईटी का जॉब छोड़ छाड़ के फार्मिंग में चले आए, और ऐसे कई सारे और भी उदाहरण है। या जैसे आपने अभी कहा कि एक आध दादा है जिनके बच्चों बच्चे खुद कहते हैं कि नहीं, हमें भी किसान बनना है। तो एक आध ऐसी कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी जरूर बताए प्लीज।
तो हमारे एक दादा है संतोष गदादे करके, जो उनके पिसा की, मतलब उनकी बचपन से ही फार्मिंग ही थी, बट केमिकल फार्मिंग करते थे। तो जिस समय उनको ये पता चला कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, मेरे ही बीवी बच्चों और घर वालों को मैं जहर खिला रहा हूँ, तो उन्होंने फिर नेचुरल फार्मिंग पे शिफ्ट करना शुरू, मतलब शुरू किया। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में वीडिसाइड नहीं यूज करते हैं, है ना, हाथ से वो वीड निकालते हैं, तो उसमें बड़ी मेहनत होती है। तो उनके परिवार वालों ने, जो बड़े हैं, माँ, भाभी, भाई, उन्होंने बताया कि ये सब काम हम नहीं करने वाले, है ना, वीडिसाइड डाल दो, खत्म बात। अगर आपको इस तरह से खेती करनी है ना, तो आप अपना अकेला दूसरा संसार बताइए, बनाइए और कीजिए। तो उन्होंने फिर शांति से सबको समझ के अपने अपना नेचुरल फार्मिंग छोड़ा नहीं, खुले आसमान के नीचे अपने श्रीमती जी और बच्चों के लेकर आए। विश्वास था मन में कि मैं कर सकूंगा, बट एकदम जीरो से फिर जीना शुरू करना है, कठिनाई तो बहुत, बट हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। और मुझे ऐसा लगता है कुछ अच्छे कामों के लिए जब हम कदम रखते हैं या अच्छे विचार हमारे रखते हैं ना, चारों तरफ से मदद मिलती है। दादा ने कभी हमको ये नहीं बताया कि मेरी इतनी कठिनाइयां चल रही है, बट क्योंकि इस रूटीन में हम फार्म विजिट्स करते हैं, तो जैसे कि मैं बारंबार उनके फार्म पे विजिट के लिए जाती थी, तो मैंने जो आंखों से देखा, मैंने जो समझा, और मैं जो अपने वॉलेंटियर को आके बताती थी कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, और जिस तरह से फिर लोग रिस्पॉन्स करते थे और उनको मदद मिलती थी, आज वो खुशहाल फैमिली अपने बीवी बच्चों के साथ में चार लोग मिलकर ही नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। करना तो यही करना है, और उनके खेत में उगी हुई सब्जी का जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। पाले भाजी घ्यावी तर गदा दे दादांची, मतलब बाकी भी किसान भाई पाले भाजी लाते हैं, उनकी भी बहुत अच्छी होती है, बट क्योंकि ये उनसे पहले जुड़े हुए हैं तो लोगों को उनकी आदत पड़ी हुई है। अभी किरण कोतुरकर दादा है, शुभम है, और बहुत सारे हैं, उनकी भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, बट स्पेशली इनकी जो जर्नी थी जीरो से आके शुरू करना, वो ही आदमी जानता है जिसने इसकी शुरुआत अपने आयुष्य में की होगी। उनका ही बच्चा, उसको गाय से और बैल से बहुत प्यार है ना, वो जैसे हम अपनी बहन को बुलाते हैं ना राधा, वो ऐसे उसके गाय के बछड़े को वो बुलाता है राधा। वो बछड़ा भी उसके गोद में जाके सोता है रात में, मतलब वो बोलता है कि जाओ अभी दूसरी तरफ माँ के पास सो, वो बच्चा उसके ही पास सोता है। यश का ही कहना है, उनके ही बेटे का, कि मैं फार्मिंग करूंगा, मैं बैल को कभी नहीं छोड़ूंगा। यही एक बड़ी चीज है कि वो लोग बीमार नहीं पड़ते कभी, मतलब गदादी दादा से मैंने कभी सुना नहीं कि एडमिट किया है बच्चा बीमार है उसको दवाई, और उनका दवाई वही होता है जो खेत में उगता है, झाड़ पाला पी लिया, काढ़ा पी लिया ऐसा। और एक दूसरे किसान का एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि हर एक आदमी चाहता है कि मैं पढ़ाई करूं, अच्छा कमाऊं, एक गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, ये सब सपना होता है। हमारे प्रशांत भूसा दादा के पास में ये सब था ऑलरेडी, बहुत मेहनत करके उन्होंने ये सब कमाया था, बट जिस क्षण कार सिद्धेश्वर महाराज है यहाँ पे कणेरी मठ के, उन्होंने कहा कि तू आप गोपालन कीजिए, बस इतना ही शब्द उनके लिए काफी रहा। मतलब देखो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होने का ये फायदा है कि उन्होंने पूछा नहीं कि मैं क्या करूं, फिर नौकरी छोड़ दूं क्या, धंधा छोड़ दूं, उन्होंने सीधा गोपालन शुरू किया। धीरे धीरे गोपालन में उनको इतना इंटरेस्ट आने लगा और गायों के साथ में इतनी मैत्री हो गई कि उनको वही उनका विश्व है ऐसे लगना लगा। उन्होंने अपना बिल्डिंग का, बिल्डर थे तो वो व्यवसाय बंद कर दिया, बाकी थोड़े फ्रोजन फूड का व्यवसाय था वो भी बंद कर दिया, पूरा उनका आमदनी उन्होंने खेती में डाला। आज सभी लोग जो खेती करते हैं, नहीं करते हैं, वो भी इसका अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि खेती में अगर हम 5 लाख डालेंगे तो हमको 10 मिलेगा ऐसा नहीं होता है। हम 5 लाख डालेंगे ना तो हमको मुश्किल से 3 साढ़े 3 मिलता है। आज भी वो फार्मिंग एकदम जी जान से कर रहे हैं, बहुत नुकसान होता है उनका, लेबर धोखा देते हैं, बट उन्होंने फार्मिंग और गोपालन नहीं छोड़ा। एक समय था कि उनके पैर को मिट्टी नहीं लगती थी, आज एक समय है कि उनका मिट्टी, उनके पैर को हमेशा मिट्टी रहती है ना। और गाय का उनका प्रेम भी ऐसा ही है, जब वो गौशाला, उनके पास में 150 से ज्यादा गायें हैं, और लोकल ब्रीड को संभालने का काम वो कर रहे हैं, तो जब वो गौशाला में एंटर करते हैं तो वो भी लाइक जैसे यश या बुलाता है वैसे, वो अगर बुलाएंगे गंगा तो गंगा बिल्कुल दौड़ के आएगी। हर एक जो किसान मिला है ना मुझे, उसका एक यूनिक आइडेंटिटी है, उसका एक फार्मिंग करने का एक अपना तरीका है। हर एक आदमी अपने इंसान, अपने अंदर इंसानियत को संजोए हुए है। मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, उदारता वाला पक्ष उनका सबका बहुत बढ़िया है।
एक तरह की मराठी में जिसको चळवळ है, मूवमेंट है ये जो आप कर रही है, तो पार्ट ऑफ दैट आप फार्मर्स को हेल्प भी करती है, आप जाके विजिट भी करती है फार्म्स पे, देखती है कि वो सच में ही ऑर्गेनिक ही खेती कर रहे हैं ना, आप एडवाइस देती है, उनसे भी आपको सीखने को मिलता है। तो एक थोड़े से एक आध एग्जाम्पल ऐसे दे दीजिए जहाँ आपने कुछ सीखा और आपने कुछ उनको नॉलेज भी इम्पार्ट की।
जी, मतलब जो मैं उनसे सीखती हूँ ना वो भी बहुत ही जरूरी है लोगों के सामने लाने के लिए। इसलिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिस पर डिस्कशन चलते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वीड निकालने के लिए बहुत पैसा लगता है, लेबर लगता है और बहुत मेहनत है उसमें। जनरली क्या करते हैं, वीडिसाइड डाल देते हैं, है ना। तो मुझे वहां पे जाके ये पता चला कि अगर प्याज अगर लगाया हुआ है तो प्याज के खेती में जो डाला जाता है वो वीडिसाइड अलग होता है। टमाटर लगाया हुआ खेती में अगर वीडिसाइड डालना है तो वो अलग होता है। बैंगन अगर लगाया हुआ है तो बैंगन को में छिड़कने के लिए वीडिसाइड अलग होता है। वो ऐसा वीडिसाइड होता है जो मेन क्रॉप को धक्का नहीं लगाता है ना। जैसे टोमेटो के खेत में वीडिसाइड डालना है तो टोमेटो मरेगा नहीं लेकिन बाकी का सब कुछ मर जाएगा। इसीलिए आज का जो फार्मर है ना वो मल्टी क्रॉपिंग नहीं करता है और वो वीडिसाइड इतना जहरीला होता है कि वो वीड मार देता है, बट कोई ऐसी जहरीली चीजें मिट्टी में डाल देता है जो मिट्टी में रह जाती है और वही मिट्टी में फिर जो हम खा रहे हैं सब्जी उसी में उग रही है। तो वो स्लो पॉइजनिंग है ये। एक दिन में आपको कुछ नहीं होगा, 20, 30, 40 ईयर्स में आपके बॉडी में ये सब आएगा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन में इसका इफेक्ट होगा। वो हम आज देख रहे हैं। जितनी मेरी माँ शक्तिशाली बलशाली थी उतनी मैं आज नहीं हूँ। उन्होंने अपने 50-55 के एज में जो काम किए हैं, अगर मैं दिन भर वो काम करूँ तो मुझे थकान से महसूस होगी। ये स्लो पॉइजनिंग है ना। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हम देख रहे हैं क्योंकि ये जो है ना ये सारा हार्मोन को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे मेंसेस बहुत बहुत जल्दी आने लगे हैं, बहुत सारे हैं उसमें डरावने हैं कुछ। तो ये ऐसा स्लो पॉइजनिंग हम ही हमारे प्लेट में बुला रहे हैं। आओ आओ, मतलब मैं जो उनसे सीख पाई वो ये कि अगर किसी की नेचुरल फार्मिंग है ये कैसे जांचे। अगर कोई किसान मल्टी क्रॉपिंग करता है, मतलब रो है वो बैगन की, एक रो है टोमेटो की, उसमें बीच में सरसों लगा लिया, एक है मक्का लगा दिया, तो ऐसा अगर क्रॉपिंग करता है तो वो इम्पॉसिबल है कि उसमें वीडिसाइड डाले क्योंकि उसको हार्म होगा दूसरे पेड़ों को ना ऐसा। और एक बात मैंने सीखी, उनकी दिनचर्या, वो लोग सूरज उगते ही पेट भर खा लेते हैं और सूरज का अस्त होने से पहले ही पेट भर खा लेते हैं। उनका जो शरीर है ना वो बहुत सुदृढ़ रहता है। और ये एक किसान की दिनचर्या नहीं देखी मैंने, ये सारों की दिनचर्या ऐसी ही है क्योंकि इनको खेत पे सनलाइट होता है तभी ये काम कर पाते हैं। जब खेत पे सनलाइट नहीं होता है तो ये काम नहीं कर पाते, तो इनकी दिनचर्या ही वैसी है। फिर खेत पे होते हैं तो पानी का सोर्स पास में ही होता है ना। तो पानी का इनटेक वो आदत ही लगी है सबको कि एक थोड़ा काम किए बैठे पानी पिए फिर से काम पे चले, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी की जो कार्य क्षमता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, वो बढ़ती है, ऐसा मैंने महसूस किया। मतलब ऐसे कुछ है भी कि उनको मुझे बताना पड़ा कि एक ही मत लगाओ, मल्टी क्रॉपिंग करो ताकि अगर एक चला जाए तो दूसरा आपके हाथ में है। वैरायटी लोग मांगते हैं, लोगों को एक सब्जी नहीं चाहिए होती है। तो धीरे धीरे बाय ऑब्जर्वेशन ही मैं इनको वो बता सकी। और एक मैंने बताया, देखा हम दादा के खेत में गए थे तो नदी के किनारे बहुत सारी रानभाजी उगी थी। रानभाजी मतलब जिसको हम सो नहीं करते हैं बट पर्टिकुलर सीजन में वो उग आती है और वो हमको हमको बहुत इम्यूनिटी देती है, साल भर की इम्यूनिटी एक बार वो खाए तो मिल जाती है हमको। तो मैंने दादा से कहा ये भाजी क्यों नहीं लाते हो आप, ये भाजी बहुत अच्छी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पुनर्नवा, पुनर्नवा नाम से ही बता पता चलता है कि हमारे सेल को पुनरुज्जीवन देता है। तो दादा बोलते हैं कि इसको सब लोग वीड बोलते हैं, कोई नहीं खाता इसको, कि नहीं ये तो बहुत अच्छी रान भाजी है, आप इसको लाइए। तो ऐसा करके करते करते दादा को भी वो पता चला कि रान भाजी है, इसको खाना चाहिए। तो वो भी अपने घर में खाने का मतलब शुरू किए और लोगों को भी अवेयर किया तो लोग भी बहुत अच्छे से खाए। तो एक रेसिपी, फिर हमारे ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, आयुर्वेदिक वैद्य, उनसे फिर उसकी रेसिपी पता चली कि किस सब्जी की पर्टिकुलर पत्ते ही खाना चाहिए, किस सब्जी की डंडी खाना चाहिए, किस सब्जी की फ्लावर ही खाना चाहिए और उससे क्या क्या न्यूट्रिशन मिलता है और किस तरह से उसको पकाना चाहिए विधिवत, ये सारे उनसे भी मार्गदर्शन मिला। इससे किसान भाइयों को बहुत फायदा हुआ। ना, और निसर्ग जो हमको फ्री में देता है, मुझे ऐसा लगता है वो फ्री गिफ्ट हमको मतलब लेना चाहिए, पूरे नेचर का भी हमको रिस्पेक्ट करना होगा।
और वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, विच मीन्स वो उस सीजन के लिए परफेक्ट है, आपके सेहत के लिए भी अच्छा है, अच्छा अबंडेंस में भी ग्रो कर रहा है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ रान भाजी है ना पर्टिकुलरली अभी ये सीजन में, मतलब रेनी सीजन में उगती है, तो रेनी सीजन में वात मतलब प्रबल रहता है, तो वो रान भाजी मतलब मायाड़ू करके है, तो मायाड़ू के पत्ते की भाजी खाने से हमारा वात संतुलित रहता है, तो वो उसी सीजन में खाना चाहिए। मतलब मुझे भी आकलन हुआ, मैं भी लोगों को बता सकी, और फार्मर भाइयों को भी, किसान भाइयों को भी ये पता चला, कभी कभार सब्जी डूब जाती है तो उनको वहां से लाना पड़ता था, बट अभी सब्जी डूब जाती है तो राम भाजी तो होती ही है, वो
हाँ,
तो गहरे पानी में भी राम भाजी रहती ही है।
आप जैसे बात कर रही है ना, वो एक हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज थी। जैसे कहते हैं ना कि हार्वेस्टिंग किसी सीजन में होना चाहिए, मून के फेजेस देख के हार्वेस्ट होनी चाहिए या सो करना चाहिए, या जैसे आपने मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा, उसमें भी एक दादा का मैं अपडेट देख रही थी ग्रुप पे कि वो कैसे एक पालक का पूरा पैच ऐसे ही रखते हैं जिससे कि वर्म्स वो खाए तो वो क्रॉप को नहीं खाती है, मेन क्रॉप को। तो इस तरह की क्या इंसाइट्स मिली कि, या जैसे यहाँ पे किसी ने मुझे बताया था कि सनफ्लावर के साथ कोई क्रीपर अगर उगाओ तो वो क्रीपर सनफ्लावर पे चढ़ जाता है, तो दोनों ही अच्छी तरह से वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो इस तरह की कौन सी आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी, तो एक आध एग्जाम्पल अगर दे।
हाँ, मतलब इसमें ना देखो, जैसे आपने क्रीपर का एग्जांपल दिया है ना, वैसे यहाँ पे अब ये नॉर्मल हो गया है कि ड्रमस्टिक का पेड़ है ना, काफी जल्दी बढ़ता है,
हाँ
और उसकी जो डंडी या स्टेम होता है ना वो काफी नाजुक भी होता है, ज्यादा वजन नहीं पेल पाता, बट क्रीपर का वजन वो बिल्कुल आसानी से ले लेता है, और वो बहुत ऊंचाई तक चढ़ता है, मतलब ऊंचाई से बढ़ता है, तो अगर दूधी या फिर स्पंज गॉर्ड, रिज गॉर्ड, इस तरह से क्रीपर अगर उसके बाजू में लगा दो, ड्रमस्टिक तो मिलेगा ही हमको, बट ये क्रीपर को नेचुरल
क्लाइंबिंग
एक घर
मिल
मिल जाएगा, है ना,
जाएगा।
और नेचुरल जितना उसको सपोर्ट मिला उतनी उसकी फिर उत्पाद ज्यादा आता है। क्या होता है, मधुमक्खियां है ना ड्रमस्टिक के फूलों पर आती हैं, बहुत मधुमक्खियां होती हैं, तो मधुमक्खियां पॉलिनेशन का बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना, जैसे दूधी बॉटल गॉर्ड, रिज गॉर्ड, स्पंज गॉर्ड, पर्टिकुलरली ऐसे वाले सब्जी वाले इसमें हमको मधुमक्खियों का बहुत सारा उपयोग होता है, तो उत्पाद बढ़ता है और उत्पादन की क्वालिटी भी बढ़ती है। अपना ड्रमस्टिक का जो टेंडर लीव्स होते हैं, मतलब एकदम कौले कौले पत्ते होते हैं, उसकी भी सब्जी बनती है, ड्रमस्टिक की पत्तियों की पराठा बनाइए, सब्जी बनाइए, दाल में डालिए, कितना सारा है। हम खुली आंखों से अगर नेचर को देखेंगे ना, तो ऐसा एक भी दिन नहीं कि हमको खाने के लिए सब्जी नहीं मिलती है। लाल भोपला होता है, उसको क्या आप कहते हैं, पम्पकिन, कद्दू के लीव्स की भी सब्जी बनाते हैं, और वो बहुत पौष्टिक होती है ना, कद्दू के फूलों को, कद्दू के दो प्रकार के फूल होते हैं, एक नर फूल एक मादा फूल, मादा फूल में फल पकड़ में आता है, और फिर नर फूल जो होता है ना उसकी पत्तियों की सब्जी बनती है, उसके पेटल्स की सब्जी बनती है।
एकाध दो और सवाल जरूर से पूछना चाहूंगी। एक तो ये कि आपका जो हेल्थी फूड बैंक है वो सिर्फ पूना में ही अवेलेबल है कि और भी जगह के फार्मर्स है जुड़े हुए इससे, और अगर पूना में ही है तो कितने कितनी जगहों पे फार्मर्स आते हैं बेचने के लिए अपनी सब्जी या प्रोड्यूस?
जो पहला किसान हमको मिला था अनाज के लिए, वो तो मतलब यहाँ से पूना से काफी दूर बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट के थे, लेकिन अभी जो हमारे पास में जो किसान भाइयों हैं वो पूना के 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया में से हैं ना, और पूना में इस तरह के बहुत सारे ग्रुप हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सारी ग्रुप महिलाएं चला रही हैं। जैसे मैं पोथरूड ग्रुप का कोऑर्डिनेशन कर रही हूँ, सभी एडमिन्स ने कुछ रूल्स बनाए हैं, वो रूल्स रेगुलेशन सदस्य फॉलो करके उन उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। सभी ग्रुप पे जाने वाले किसान भाई सेम नहीं है, क्योंकि उन उसका उतना उनका उत्पाद भी नहीं है, और हर संडे इतने मल्टीपल ग्रुप पे जाना किसान भाइयों को पॉसिबल भी नहीं है
हाँ
ना, तो जैसे एक रूट बनाया है कि एक रूट में 3 ग्रुप मैक्सिमम, जैसे तीन ग्रुप में जाते हैं थक जाते हैं किसान भाई, और भूखे पैसे होते हैं ना, रात को 3 बजे निकले होते हैं, तो कम कम से कम 1 बजे तक उनका डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाए और उनको इस जर्नी में ठीक ठाक खाना मिले। और रूट भी इस तरह से बनाए हैं कि दूसरा जो मतलब कोथरूड ग्रुप है, तो कोथरूड ग्रुप के पहले जो ग्रुप है वहां से किसान भाई मतलब वहां पे पहुंचने के लिए जितना समय लगता है उतना समय का बीच में हम मार्जिन रखते हैं। जैसे 7:30 बजे संडे 7:30 बजे गांधी भवन ग्रुप होता है, गांधी भवन का ग्रुप 8:15 बजे खत्म होके 5 मिनट लगते हैं कोथरूड ग्रुप पे आने के लिए, है ना। तो हमने कोथरूड ग्रुप का टाइमिंग 8:30 रखा है। फिर कोथरूड के बाद में अशोक नगर होता है जो 11:15 को शुरू होता है। कुछ बहनें हैं जो किसान भाइयों के लिए नाश्ता लाती है, पानी लाती है, चाय लाती है, वो सब कुछ हो जाता है। और फिर ये लोग अपने अपने ग्रुप पे जहाँ जाना होता है वहां पे निकल जाते हैं और ग्रेस टाइम मिलता है 1/2 घंटा जिसमें उनकी जर्नी होती है। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि जब नया किसान हम ग्रुप में ऐड करते हैं तब हम ये इंसानियत खुद में रह मतलब रख के उसकी परख करते हैं, है ना। उसकी परख पहले ही हो जाती है कि वो ग्रुप में हम उसको शामिल करें, है ना। ग्रुप में शामिल होने के बाद में फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस किसान की जो भी कुछ त्रुटियां है ना उसको फिर उससे उभारूं। मुझे पता चला वो गलत है तो मेरी जिम्मेदारी है कि गलती का ऑप्शन क्या है, कैसे सुधारे इसको बताऊं। एक बार वो फैमिली में आ जाए तो वो फैमिली मेंबर ही होके रहता है। किसान भाइयों को पूछा भी था एक दो बहनों ने कि भैया आपको ग्रुप पे आते कैसा लगता है, अभी अभी आमदनी अच्छी खासी होती होगी ना आपकी। तो सभी का उत्तर लगभग ऐसा ही था कि आमदनी तो होती है बट जो आदर सम्मान और सुख आपसे मिलता है ना वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कि जो इंसानियत की डोर है ना वो बहुत मजबूत है, मतलब मेरे हाथों से बंधी हुई, और मैं उसको इतना इजीली टूटने नहीं दूंगी। मुझे देखते हुए जो भी कुछ ग्रुप के वॉलेंटियर है ना, जिनको ये मतलब विचार भा जाते हैं वो भी उसी डेडिकेशन से इसको फिर एडमिनिस्टर करते हैं। अभी तो ये है 7 सालों में, शुरुआत मैंने की थी लेकिन अभी हमारे 18 वॉलेंटियर्स हैं। हम सब लोग मिलके इसका कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि कहीं मुझे कॉलेज में जाना पड़ा या कहीं काम से बाहर जाना पड़ा तो ग्रुप का एक्टिविटी थम गया, ऐसा नहीं है। और ये अनसेड अनरिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये वॉलेंटियर्स ने ली हुई है। कोई किसी को आदेश नहीं देता है कि आपको ये करना है, सभी लोग स्वयंस्फूर्त विधि से आगे आके इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। ये मेरे लिए बहुत सुखावह बात है कि ऐसा भी एक स्वर्ग धरती पे निर्माण हो सकता है, यही तो चाहते हैं ना हम लोग।
और अगर कोई या किसान भाई या कोई आप किसानों से ऐसे संपर्क में आना चाहे, खरीदी करना चाहे, तो वो किस तरह से जुड़े आपके साथ?
एडमिन है, उनको वो नंबर पास ऑन कर देते हैं, है ना, जिनको ज्वाइन करना होता है उनको। फिर हम उनको ग्रुप के कुछ इंट्रोडक्टरी मैसेज भेजते हैं और हम उनको पूछते हैं क्या आपके पास में समय है ग्रुप के मैसेज पढ़ने के लिए, क्या आपके पास में समय है ऑर्डर दिया हुआ सब्जी लेने के आने के लिए। अगर ऐसा है तो आप अगर चाहेंगे तो हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। इस तरह से एक फॉर्मेटेड मैसेज हमने ड्राफ्ट करके रखे हैं और फिर हम एडमिन लोग उनको ग्रुप में ऐड करते हैं।
मैं आपके ग्रुप को अगर ज्वाइन करने वाले कोई हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर डाल दूंगी, उन पे आप जरूर मैसेज डाल के, सिर्फ मैसेज डाल के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
और हमारे पास में 2 किसान भाई ऐसे हैं कि जो ओवरऑल महाराष्ट्र में या इंडिया में उनका उत्पाद बेच सकते हैं, उनके पास वैसी प्रोविजन है। जैसे प्रशांत भूसा दादा है, उनका उत्पाद बहुत बड़ी तादाद में होता है, तो अगर कुरियर से कोई मंगाना चाहे तो उनसे पर्सनल कॉन्टेक्ट करके वो कुरियर से भेज सकते हैं। दूसरा संतोष बोबड़े करके हैं, तो वो उनके पास ये सारे मिलेट्स या मिलेट्स से बने हुए सारे प्रोसेस आइटम हैं। तो संतोष बोबड़े भी होम डिलीवरी करता है, वो होल महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के आसपास दे सकते हैं।
आखिरी सवाल प्रतिभा ताई, जो आपने ये एक एक किस्म का मूवमेंट कही है जो आपने एक इतने 7 सालों से काम कर करके एक ग्रुप सा बनाया है जो बहुत ही अच्छा सा कम्युनिटी सॉर्ट ऑफ फील है, मगर ये इसको परसिस्ट कैसे किया जाए, ये आगे कैसे बढ़ाए, कि हाउ डज दिस सस्टेन अहेड?
ये प्रश्न तो मुझे भी है और मैं इसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा पहले ही कि अगर मुझे विष मुक्त खाना है तो जिम्मेदारी मेरी है, अगर इसको सस्टेन करना है तो जिम्मेदारी मेरी है, अगर इसको सुचारू रूप से चालित रखना है तो जिम्मेदारी मेरी है। मुझे ऐसा लगता है कि विष मुक्त नेचुरल फार्मिंग जिम्मेदारी खाली फार्मर की नहीं है। अभी जो लोग कंज्यूमर करके जुड़े जुड़े हुए हैं, जो पर्यावरण के साथ में काम कर रहे हैं, उन सभी का अल्टीमेटली गोल यही है कि सुजलाम सुफलाम हो जाए। बट उसके लिए ऐसा ग्राउंड लेवल से काम करना, फार्मर को सपोर्ट करना, ऐसी जहां पे सिस्टम वॉलेंटरीली शुरू है उस सिस्टम को सपोर्ट करना या उसको आगे कैसे ही ऐसे सुचारू रूप से चालित रखा जाए, इसके लिए सोचना और अपने हेल्पिंग हैंड सामने लाना, ये सब की बहुत मतलब जिम्मेदारी है। किसान भाइयों की भी जिम्मेदारी है और जिनको ऐसा उत्पाद चाहिए उनकी ही उनकी भी जिम्मेदारी है। और मुझे बताने में बहुत हर्ष होता है कि कुछ वॉलंटियर्स ऐसे हैं कि जिनके पास में बहुत समय नहीं होता है, बट जब भी उनके पास में समय होता है ना, वो आके अपना अपना हाथ बटा के चले जाते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता कि ये चीज उन्होंने की। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग मुझे दिखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लेने वाले लोगों की संख्या और बढ़े, नैसर्गिक उत्पाद खाने वाले में अवेयरनेस और जागरूक हो, और खाने से शुरू होता है फिर धीरे धीरे वॉलेंटियरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और एक्टिवली इस ग्रुप को रन करने में एडमिनिस्ट्रेट करे, एडमिनिस्ट्रेशन छोटा सा होता है, बट कंसिस्टेंटली मैं मुझे यही उत्पाद चाहिए, ये सारे जो पब्लिक है वो तादाद में चाहिए, तभी किसान की फार्मिंग हो सकती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे मतलब मुझे अच्छा हुआ आपने इसको पूछा। तो मैं यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जहां जहां भी ऐसे ग्रुप नहीं है बट जो ऐसा नेचुरल खाना चाहते हैं, तो प्लीज इसको इनिशिएट कीजिए, ढूंढिए नेचुरल फार्मर कौन है, ऐसा ग्रुप बनाइए, लोगों को भी एजुकेट कीजिए, किसानों को भी धाड़स बनाइए, उन दोनों के दोनों को जोड़िए, एक ब्रिज की तरह हम एक्ट कर सकते हैं, है ना। भगवान का दिया हुआ हमारे पास में बहुत कुछ है, दिस बॉडी इज अ नेचर्स गिफ्ट। हम भाग्यशाली है कि हमको ये अवसर मिला है कि हम ह्यूमन बन के इस धरती पे आए, तो कुछ सार्थक काम करके जाए, है ना, ताकि आखिरी सांस तक हमको वो समाधान फील हो सके कि हमने कुछ धरती माँ के लिए कर गए हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा निसर्ग छोड़ गए हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है कि हम जो काम करते हैं, हम जो विचार रखते हैं ना, वही विचार तो जीवित रहते हैं, उसी को लोग याद रखते हैं। तो हमारी अगर धरोहर कुछ छोड़ना है तो विचारों के रूप में, काम के रूप में को छोड़िए अपने अगले जनरेशन के लिए। मैं तो यही मतलब सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी और चाहूंगी।
परफेक्ट प्लेस टू स्टॉप। थैंक यू वेरी मच प्रतिभा भाई, बहुत 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 ही अच्छा लगा। काम का स्वरूप चाहे बहुत आसान हो, मगर उसकी सोच बहुत बहुत गहरी है, तो उससे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।
और मुझे भी ना, मुझे आपसे तहे दिल से मैं थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि जनरली ये काम है ना बहुत ग्राउंड लेवल का होता है। ये काम करने वाले लोगों को बहुत मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा बहुत लोग नहीं मानते हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ तो कुछ कर रहे हैं ऐसा मानते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि उतनी सोचने की सबके पास में गहराई नहीं है, सबके पास में इतना समय भी नहीं है कि रुक के सोचा जाए। तो आपने एक अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि ये अवेयरनेस क्रिएट होने की बहुत आवश्यकता है, ये लोगों तक मैसेज चला जाए और उससे और जगह भी ऐसी मोमेंट शुरू हो और अपनी धरती वापस सुजलाम सुफलाम हो। और उसके लिए आपने मुझे जो ये दिया, संधि दी है ना, उसके लिए आपका मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद भाई।